This is a podcast for Radio Sangam, the number one followed Asian community radio station in the UK.
कुछ सोच दिए पर कह न पाउंदी
कुछ सोच दिए कह न पाउंदी ये साथियों हो सकता है कि बहुत से हमारे लिसनर्स ने ये सॉन्ग जो है किस फिल्म से है इसको पहचान लिया होगा नई अपकमिंग पाकिस्तानी फिल्म पिंकी मेम साहब से ये गीत है और अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे इसी फिल्म की राइटर डायरेक्टर को प्रोड्यूसर शाजिया अली खान साहिबा से और उनकी ज़बानी सुनेंगे कि ये फिल्म बनाते हुए क्या कुछ हुआ किस तरह से ये नाम इन्होंने चूज़ किया कहाँ ये फिल्म जो है वो डायरेक्ट हुई है खूबसूरत फिल्म और साथियों आप यकीन मानिए कि बहुत बड़ा जो ये लोग होते हैं राइटर्स डायरेक्टर्स इनके कंधों पर बोझ होता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक नया दोबारा से जो उसकी पहचान है उसको एक नए अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना लोगों में दुनिया में उसका एक मयार जो है ख़त्म होते हिचकियां ले रहा था उसको दोबारा से अपने कदमों पे खड़े करना इन्हीं प्रोड्यूसर्स का काम है कि उस चीज़ को किस तरीके से इन्होंने संभाला
लग दियो ही जाने सच कहंदे लोक से आने डल दे सूरज भी चढ़ जांदे ने जिस तन लग दियो ही जाने सच कहंदे लोक से आने डलदे सूरज भी चढ़ जांदे ने इम्तिहा तेरा कुड़े वक्त पौड़ा फेरा कुड़े ए हनेरा कदी ते छट जाना तेरा राजा राजी न होना तू की वे दिल पर छोड़ना सोनिए सोनिए तेरा राजा राजी न होना तू की वे दिल पर फजावां दे यादां विछड़े शहर दिया लगदा है जीवें भुल रही कौन नी तेरा कुड़े कर लैन खेड़ा कुड़े वांग परदेसिया तू हो जाना तेरा राजा राजी न होना दिल पर छोड़ा सोनिए सोनिए खाब जाए लग दिए जान दुनिया तो मासूम जाए लग दिए गल्ला तो लब दिए कोई ओदी गल्लू समझ पावे कुछ सोच दिए पर कह न पाउंदी तेरा कुड़े रा
اوکے جناب، ایک بار پھر سے کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. اور جب کبھی بھی کوئی انٹرویو آتا ہے آسما آپ کے ساتھ، تو میں ایک دم سے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا قسم کا ایج لے کے تو میں بیٹھ جاتا ہوں ساتھ
اور میں آپ کے کندھے کا سہارا لیتی ہوں.
ہاں تو ہم مل جل کے یہ انٹرویو کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شازیہ علی خان جو کہ اس وقت لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے. ان کی ایک نئی فلم پنکی میم صاحب آ رہی ہے اور جس کا یہ آپ بیک گراؤنڈ میں آپ گانا بھی سن رہے ہیں، عمران علی اختر کی بہت ہی خوبصورت سی آواز ہے. اور اس فلم کے حوالے سے جتنی بھی سٹوری ہے، کہاں فلم بنی، کیسے بنی، سٹوری کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے اینڈ آل دیٹ ہم شازیہ جی سے جانیں گے. السلام علیکم جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ بتائیے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟
جی تھینک یو ویری مچ. گرمی کھا رہے ہیں دبئی کی.
دبئی میں تو ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. یقیناً ہم آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے اس فلم کے حوالے سے، اور آپ کی کچھ کاسٹ بھی جو تھی وہ موجود تھی کچھ دن پہلے مذاق رات میں بھی، وہاں پہ بھی پنکی میم صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوئی. تو یہ بتائیے گا کہ اس بہت ہی خوبصورت سی فلم کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے، کیسے آپ کے ذہن میں یہ فلم. اور میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شازیہ علی خان ماشاء اللہ برٹش پاکستانی ہیں اور اس انڈسٹری میں آئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی مزید جب بات چیت آپ سے کریں گے تو اس حوالے سے بات چیت کریں گے. لیکن پہلے بتائیے گا کہ اس فلم کو بنانے کا آپ کے ذہن میں بیسک آئیڈیا کیسے آیا. آپ رائٹر بھی ہیں، اس کی ڈائریکٹر بھی ہیں، اس کی کو پروڈیوسر بھی ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا پلیز.
جی تھینک یو. سب سے پہلے تو آئی وانٹ ٹو تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. آئی ایم ناٹ شور ویدر آئی ڈیزرو اٹ اور ناٹ، بٹ میں پوری کوشش کروں گی. اور جہاں تک فلم کا تعلق ہے تو بس جی بن گئی. میری ٹریننگ فلم میکنگ میں ہے اور میں نے کافی ڈاکیومینٹریز بھی بنائی ہیں اس سے پہلے، لیکن یہ میری فرسٹ فیچر فلم ہے. اور اس کا آئیڈیا مجھے اس طرح آیا کہ میں دبئی میں رہتی ہوں اور ہر روز ان لوگوں سے ملتی ہوں جو اپنا وطن چھوڑ کے اور ایک نئے وطن کو اپنا گھر بنائے بیٹھے ہیں، ایک نئی زندگی کی تلاش میں، مے بی اپنی فیملی کو ہیلپ کرنے. تو ان کو اور وہ ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کافی ویل ٹو ڈو ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے ایک ایلین کنٹری میں. تو ان سے متاثر ہو کے یہ کہانی لکھی ہے. لیکن یہ تھوڑا سا وہ لیکچر ٹائپ مووی نہیں ہے جو کہ اکثر لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں آرٹ فلم کو، کہ اس میں تو بڑی سیریس چیزیں. بھائی ہمارے زندگی میں انف سیریس چیزیں ہیں. ہم جب سینما میں جاتے ہیں تو ہمیں اچھی اچھی شکلیں نظر آنی چاہیے اور اچھے اچھے گانے نظر آنے چاہیے. تو وہ ایلیمنٹ میں نے اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ یہ مووی اس کے کچھ اچھے مطلب سبق بھی ہے لیکن انٹرٹیننگ بھی ہے. جی تو باقی کہانی آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو کتنا پتا ہے، بٹ ایک بڑی انوسنٹ سی ینگ لڑکی پنجاب کے گاؤں سے اٹھ کے آتی ہے میڈ بننے دبئی میں.
اچھا.
اور وہ بڑا اس کو ایک کلچر شاک ملتا ہے کیونکہ اس گھر میں وہ کام کرنے آتی ہے وہ بھی پاکستانی ہے، لیکن دے بلونگ ٹو دا سو کال ایلیٹ یو نو کلاس آف پاکستان. تو وہ ان کو دیکھ کر، ان کی زندگی دیکھ کے اس کو جو کلچر شاک ملتا ہے اور وہ کس طرح اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتی ہے، اس طرح یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اور اس میں اور بھی بہت سے کیریکٹرز ہیں. اس گھر میں فلپینو میڈ بھی ہے، ایک راجستھانی ہندو ڈرائیور بھی ہے، اور بھی جو ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ جو دبئی میں رہتے ہیں ان سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے. شروع میں تو گھبراتی ہے کیونکہ اس کے وہ پری کنسیو نوشنز ہیں کہ لوگ یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہوں گے، لیکن جب وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو شی ریئلائز یو نو اٹس اباؤٹ ہاؤ شی ڈیولپس ایز اے پرسن.
اچھا شازیہ جی، یہ بتائیے گا کہ کیا اس فلم میں، چلے یہ تو ایک کہانی ہے، اس کے علاوہ بھی اس فلم میں آپ نے دکھایا کہ وہاں پہ جو لوگ، آپ کو پتا ہے بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ یو اے ای میں کام کرتے ہیں، عرب امارات میں کام کر رہے ہیں، بہت سے گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، کیا بیسک اس فلم میں وہ بھی آئیڈیا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو مشکلات ہوتی ہیں نوکریوں کے حصول میں، یا نوکریوں میں جب وہ آتے ہیں نوکری حاصل کرنے تو انہیں جو مشکلات ہوتی ہیں، کیا اس فلم میں اس قسم کی بھی کوئی اسٹوری ہے؟ اس فلم میں کوئی آپ نے ایسا بھی کوئی چیز جو ہے اسے ہائی لائٹ کیا؟
جی ظاہر ہے، بیکاز یو نو جیسے میں نے کہا کہ ہم ریئل لائف سے بہت قریب رہنا چاہتے تھے اس فلم میں. لوگ اسکیپزم مانگتے ہیں، لارجر دین لائف مووی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آن دا کنٹری شاید اس کو میرا ڈاکیومینٹری بیک گراؤنڈ کہہ لیں، बट जितना रियल मैं रख सकती थी मैंने रखा. तो उस सिलसिले में ऑफकोर्स आपको तो पता है, और ये सिर्फ दुबई की बात नहीं है, मैंने लंदन में भी बहुत वक्त गुजारा है और भी अमेरिका नॉर्थ में, जहां भी लोग अपना घर छोड़ के जाते हैं उनको हार्डशिप तो देख को फेस तो करना है. लेकिन इस फिल्म में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ कि जस्ट बिकॉज आपने शायद सपोज आपकी एजुकेशन इतनी नहीं है या आपकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है, इसका ये नहीं मतलब कि सिर्फ वही लोग हार्डशिप करते हैं. इस फिल्म के जरिए मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जिनके पास बहुत पैसा भी है और जो जो बज़ाहिर बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से खुश हैं. और वो जो एक कमी है उनके अंदर, वो स्पेशली परदेश मुल्क में क्या होती है, उसके ऊपर भी हमने टच किया है.
सही. अच्छा शाजिया जी, हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आया, अरसलान साहब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस फिल्म का नाम बहुत डिफरेंट रखा गया है अमूमन पाकिस्तानी फिल्मों के नाम से. इवन अगर कोई आर्ट फिल्म भी होती है उनके नाम भी जरा डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन इस फिल्म का स्पेसिफिकली बहुत डिफरेंट नेम है. इसके पीछे क्या आइटमोलॉजी है, क्यों इस फिल्म का नाम आपने पिंकी मेम साथ रखा?
आपको पता है कि ये कितनी दफा ये नाम बदला, बल्कि एडिट हो गई, गाने सब हो गए, और तब भी ये नाम और लोग कहते थे अब ये रख लो वो रख लो. लेकिन जब हमने ये ड्राफ्ट पहला लिखा था तो इस स्क्रिप्ट का नाम था पिंकी, तो ये हमेशा से पिंकी था. और पिंकी वो जो लड़की आती है गांव से, उसका नाम पिंकी है. और मेम साहब इसलिए क्योंकि बेसिकली ये दो लेडीज की कहानी है ना, एक तो जो पिंकी है और फिर एक जिसके घर वो
काम कर
महर जिसके घर वो काम करने आती है, और वो उसकी मेम साहब है.
सही.
तो वो इस तरह ये नाम पिंकी मेम साहब पड़ गया. लेकिन मैंने सुना और भी बहुत पिंकीज हैं दुनिया में, तो लोग मुझसे ये पूछते हैं ये आपने उन पिंकी के पीछे तो नहीं लिखेगा. वो मुझे बड़ा अपोलोजेटिकली कहना पड़ता है कि ये भी मैंने 2 साल पहले लिखी थी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि कौन पिंकी है और कौन नहीं. तो बट वो बस एक इत्तेफाक कह लें उसको.
इत्तेफाकन ये बात होगी.
जी.
अच्छा अशाजी जी, ये बताइएगा इसके साउंड ट्रैक्स, एक तो इमरान अली अख्तर का ये ख्वाब चल रहा है, इसके अलावा अलीसिया की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो है, इसके अलावा इस फिल्म के कितने साउंड ट्रैक्स हैं, और अगर कोई अभी पोस्ट प्रोडक्शन.
जी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग्स, बिकॉज आप नोटिस करेंगे कि अभी तो खैर 2 ही रिलीज हुए हैं. एलिमेंट मीडिया हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं और वो अब तीसरा करने जा रहे हैं. बट आप नोटिस करेंगे कि तीन गाने इसमें, और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. और उसकी वजह ये कि मेरा ख्याल में पाकिस्तान में म्यूजिक इज अमेजिंग, द आर्टिस्ट आर अमेजिंग, एंड वी वांटेड टू शो केस के अक्रॉस द बोर्ड कि हम हर जॉनरा का म्यूजिक कर सकते हैं. तो ख्वाब जई ऑफकोर्स पंजाबी बैलेड है, वो दिल को छू जाने वाली शायरी और धुन, और फिर अलीशा ने वो जैज और वेस्टर्न फ्यूजन अब्बास अली खान ने उसको कंपोज किया है, उस उन्होंने वो गाया जिसमें क्या रेंज है कि वो किसी भी यूरोपियन जैज सिंगर के मुकाबले में वो अच्छा एक होगा. और तीसरा जो है वो टॉप सीक्रेट है. अच्छा. वो हमारा जिसे कहते हैं सीक्रेट वेपन है, और वो उसमें हमने कोलैबोरेशन किया है इंडिया से. तो क्योंकि ये पूरी मूवी इज अबाउट पाकिस्तान इंडिया यूनिटी एंड लव दैट कैन एग्जिस्ट. आपने नोटिस किया होगा ना कि इंडियंस और पाकिस्तानीज को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है जब वो इंग्लैंड में रहते हैं या दुबई में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं या अमेरिका में. तो ये थीम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इस मूवी में, तो इसलिए हमने म्यूजिक को भी एक तरह से ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया. और तीसरा गाना इंडिया से के साथ हमने इंडियन आर्टिस्ट के साथ किया है, जिसमें कविता सेठ हैं जिन्होंने वो गूंजा सा एक कोई एक तारा गाया था, और उनके बेटे ने इसको कंपोज किया है, उनका नाम है कनिष्क सेठ. लेकिन आई थिंक मुझे इतना भी आपको नहीं बताना चाहिए था क्योंकि वो सीक्रेट है, लेकिन बहुत जल्द आप वो भी सुनेंगे.
नो मोर सीक्रेट नाउ. शाजिया जी, सायरा जी पूछ रही हैं, हमारी लिसनर्स हैं, बड़े गौर से सुन रही हैं आपको. वो कह रही हैं कि इसकी जो शूटिंग है वो कहाँ कहाँ हुई है, दुबई में की जो
जी,
दुबई से बाहर कहाँ?
जी तो कहा, जी तो कहानी ज्यादा दुबई की है. ये 80% शूटिंग हुई है दुबई में, और फिर हम हमने पाकिस्तान में की है शूटिंग, वहाँ नॉर्थ में एक बहुत खूबसूरत विलेज है, तो उधर हमने, वहां से पिंकी आती है. तो यू सी स्पेशली जो फॉरेन ऑडियंस है, जो पाकिस्तान नहीं अभी विजिट जिन्होंने किया, उनको ये दिखाना बहुत जरूरी था कि जब आप घर छोड़ के आते हैं तो वो घर है क्या. तो इसलिए उसकी जिंदगी दुबई से पहले दिखानी जरूरी थी. तो इसलिए हमने पाकिस्तान के गांव में शूट किया और इस्लामाबाद में काफी शूटिंग हुई है.
ठीक है. अच्छा, मतलब है कि नॉर्दर्न इलाके भी आप बता रहे हैं अपनी फिल्म में, दैट्स रियली गुड एक्चुअली. कि लोग जो हम जैसे लोग जो घरों से बहुत दूर है, जब फिल्मों में हम अपनी चीजें देखते हैं तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है.
जी, एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी पिक्चरेस्क, वेरी ब्यूटीफुल सीनरी एज यू नो. सो जी, so then it just adds to the I mean, of course if you point the camera anywhere it looks absolutely gorgeous, so that's one of the reasons I chose the north.
Acha Shazia ji, ek baat aap se puchni hai ki film jo hai wo India mein release ho rahi hai kya?
Hai, aapne meri dukhti rag pe haath rakh diya. Main koshish to bahut kar rahi hu ki wahan release ho, लेकिन अभी तक यू नो नहीं चांसेस. और उसकी जो मेन दो वजह हैं, वजूहात है, वो ये है कि एक तो वहाँ बहुत कंपेटिटिव इंडस्ट्री है. मतलब आपकी जहाँ पाकिस्तान में महीने में एक बनती है तो वहाँ महीने में 10 बनती हैं, तो वो जाहिर है जरा मुश्किल होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेना, सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रही हूँ. और दूसरा, कुछ हमारे अगर थोड़े से हालात भी ठीक हो जाएं पॉलिटिकली तो बहुत मेरे जैसे लोगों को फायदा होगा.
बिल्कुल. और यूके और यूएसए में होगी रिलीज?
जी. सो बेसिकली आपको पता नहीं, ये मैंने शायद बताया नहीं कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है. इसका मतलब ये है कि कोई पावरफुल प्रोडक्शन हाउस इसके पीछे नहीं है. और उसकी वजह ये है कि क्योंकि कहानी बहुत रियल है और इसमें हमने इंडिपेंडेंट सिनेमा को बहुत जहन में रखा है, तो कोई इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था.
हालांकि उनको शायद ये कहना चाह रही हूं कि इसमें कमर्शियल एलिमेंट थोड़ा कम है, इसलिए जो ऐसे लोग हैं वो कमर्शियल एलिमेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं.
जी, वो वही आपको पता है ना कि वो शादी के गाने कितने हैं, मेहंदी नंबर है या नहीं, कौन कौन स्टार कर रहा है. मतलब देखें, मेरी बात ये नहीं है कि देखें, बड़े स्टार्स एक वजह से बड़े स्टार्स होते हैं, तो मैं किसी तरह उनको डाउनप्ले नहीं कर रही, उनकी अपनी एक जगह है. लेकिन कई दफा जब आप रियलिस्टिक फिल्म्स बनाते हैं तो आपको बिल्कुल कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग करनी पड़ती है. उसमें कई दफा जो आपके टॉप स्टार्स उस जमाने के चल रहे हो वो शायद फिट ना होते हो, तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर फिल्म में बड़े स्टार्स हों. तो वो द गुड थिंग इज कि बड़े स्टार्स की वजह से फिल्म बहुत जल्दी बिक जाती है, जो कि हमारी जैसी फिल्मों के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल है लोगों को समझाना. बट आई थिंक मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि जब लोग इसको, इसकी एक्टिंग जो इस फिल्म में है वो मेरे लिए बहुत सोर्स ऑफ प्राइड है, बहुत अच्छी एक्टिंग हुई है.
लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ सीरियसली, कि जब हमने इसका ट्रेलर देखा था, ट्रेलर के वक्त भी और अभी भी, इवन यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस फिल्म के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस फिल्म को एंटीसिपेट किया जा रहा है यहाँ पे यूके में स्पेशली. तो मैं आपको इस पे यकीनन मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसकी लोगों को बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार है.
और हमें खुद शिद्दत से
बहुत मेहनत की है
कि हम लोग अपने मुल्क से दूर जब इस किस्म की फिल्म आती हैं, आप यकीन मानिए हम इतने शौक से देखते हैं, जो हमारे दिलों के, हमारे घरों के करीब होती है. और
जी, ये तो बेशक आप लोगों की सपोर्ट चाहिए.
अच्छा शाजी जी, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में ये फिल्म जो है ये 7 तारीख को रिलीज हो रही है, 6 तारीख को ये फिल्म यूएई में रिलीज हो रही है. यूके और यूएस के लिए आपके पास कोई अभी सर्टेन डेट्स हैं तो वो भी बता दीजिए हमारे सुनने वाले.
यूके और यूएस में हम पूरी कोशिश करें डिस्ट्रीब्यूशन लेने की. वो थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन होता है, बट मैं हिम्मत नहीं हारूंगी. अगर हमें बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले तो मैं इंशाल्लाह ये फिल्म प्राइवेट स्क्रीनिंग के को लेकर आऊंगी. और जो जो हमारे मेन 4-5 शहर हैं इंग्लैंड में और मे बी इन सम अदर कंट्रीज इन यूरोप एंड देन ऑफ कोर्स इन अमेरिका, आई विल डेफिनेटली इंशाल्लाह ब्रिंग द फिल्म. टू बी एंजॉयड ऑन द बिग स्क्रीन, क्योंकि टीवी पे तो आ ही जाएगी आई गेस इंशाल्लाह एक दिन, लेकिन अगर आपने इसको ट्रूली एंजॉय करना है तो यू शुड वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन द वे इट वॉज मेंट टू बी एंजॉयड.
सही. अच्छा जी, सायरा जी का यहाँ से सवाल है, वो पूछ रही हैं कि आप कब यूके के जो लोगों को मसाइल हैं, आप यूके की रिहायशी हैं लेकिन आपने दुबई के लोगों की फिल्म बनाई है, तो यूके के लोगों को यहाँ पे इमिग्रेशन के बहुत से मसाइल हैं, घरेलू डोमेस्टिक इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, अगर आप रियलिटी के करीब कोई और ऐसा फिल्म फ्यूचर में बनाना चाहती हैं तो क्या वो यूके में बनेगी?
जरूर जरूर, क्यों नहीं, वो तो कहानी पे डिपेंड करता है. लेकिन मैंने एक्चुअली इधर जब हम दुबई नहीं रहते थे और लंदन में थे तो वहां मैं एक टॉक शो करती थी, प्रोड्यूस और डायरेक्ट, उसका नाम था टॉकिंग दीवर्स. और वो जो टॉक शो था ARY से आता था, और वो टॉक शो बात ही इस चीज पे करता था कि जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी जो इंग्लैंड में रह रही है उनको क्या क्या मसलों से गुजरना पड़ता है. और हम फिर गेस्ट को बुलाते थे, उनसे बात करते थे, तो मेरे पास वो वेल्थ बहुत है उस इंफॉर्मेशन की. हो सकता है कि मैं उसको स्क्रिप्ट में बदल दूं. इंशाल्लाह आप दुआ करें ये कामयाब हो तो फिर वो भी जरूर देखेंगे.
बिल्कुल मटेरियल हो, क्योंकि एक जमाने में यहाँ पर मंगेतरों बेचारों की बहुत इश्यूज थे, बेचारा मंगेतर बड़ी चीजें बनी. तो जाहिर है आपने जब वो टॉक शो किया तो आपके पास तो काफी मटेरियल होगा इन चीजों पर.
जी जी, बाकी बहुत 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 ज्यादा गेस्ट आए और उन्होंने क्या क्या स्टोरी सुनाई, तो वो बहुत जी वो मेरा एक्सपीरियंस काफी इनरिच हो गया उससे.
अच्छा, ज़ुल्फ़िकार साहब का
और कुछ नेगेटिव स्टोरीज नहीं है. जी जी,
आप बात कीजिए प्लीज, बताइए.
जी मैं कह रही थी कि इंग्लैंड की स्टोरीज सारी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वहां से बहुत पॉजिटिव स्टोरीज भी सुनने को मिले, ऐसे लोग जो बहुत अच्छा काम करे. वो एक हमारे शो पे आए थे, अब मैं उनका नाम भूल रही हूँ, एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्होंने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जिसमें जिन औरतों के वो एसिड बर्न विक्टिम्स होते उनकी वो मुफ्त करते थे. और फिर उसी डॉक्टर पे शर्मीन उबैद चिनॉय ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको पहला ऑस्कर मिला था. तो जहाँ बुरी कहानियां वहाँ अच्छी कहानियां भी हैं.
सही. अच्छा शाजिया जी, ज़ुल्फ़िकार साहब का सवाल है, वो कहते हैं कि अपनी कास्ट के हवाले से बताइएगा और आपके को प्रोड्यूसर्स और दीगर जिन लोगों ने आपकी इस पूरे प्रोजेक्ट में मदद की, उस हवाले से जरा बताइए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में आपकी मदद की.
जी तो कास्ट को पहले लेते हैं. कास्ट में जो दो मेन लड़कियों के जो कैरेक्टर्स हैं वो अदा करें पिंकी हाजरा यामीन, जो कि एक थिएटर एक्ट्रेस है कराची की, अनवर मकसूद साहब ने उनको ट्रेन किया है, तो बहुत अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस हैं. और मजे की बात ये कि वो बिल्कुल कराची आई थी, उनको पंजाबी दूर दूर से नहीं आती, और मैंने उनको कहा कि आपने बनना एक पेंडू पंजाबी लड़की, तो वो काफी डर गई थी लेकिन क्या खूब उन्होंने अपना वो किया है काम. और किरण मलिक एक किरण मलिक एक मॉडल है और काफी फेमस है फैशन इंडस्ट्री में, और ये उनकी पहली फिल्म, आई थिंक एक और फिल्म कर चुकी है शान के साथ लेकिन वो अभी रिलीज नहीं हुई, तो ऑन स्क्रीन आई थिंक ये आप उनको पहली दफा देखेंगे. और बहुत मतलब के बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपने मॉडल को लिया है, उनका फन नहीं है एक्टिंग, तो आई एम श्योर यू ऑल विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि किरण ने कितनी अच्छा निभाया उसको रोल को. और फिर अदनान जाफर हैं, वो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर हैं, उनको आपने परवाज़े जुनून में देखा होगा, और भी बहुत सी फिल्में उन्होंने की हैं, और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं दुबई के. और फिर मेरे बहुत ही चहीते सनी हिंदुजा मुंबई से आए थे, वो राजस्थानी ड्राइवर जिसका मैंने जिक्र किया था, वो उन्होंने ही इज ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ही इज द कॉमिक रिलीफ ऑफ द फिल्म. जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज लेक्चर नहीं हो सकती, थोड़ा मजा भी आना चाहिए फिल्म को देख के, तो सनी इज द कॉमिक. जी उन्होंने वो लाइट हार्टेड टच दिया मूवी को. और फिर मेरे आई वॉज वेरी लकी टू हैव बड़े वेटरन एक्टर्स, खालिद अहमद साहब आप उनको जानते होंगे, पाकिस्तान इंडस्ट्री के बहुत वेटरन एक्टर हैं, वो हैं इसमें. शमीम हिलाली जी हैं जो कि ड्रामास में आप देखते होंगे, और फिर हाजरा खान हैं जो कि उन्होंने बहुत एक कंट्रोवर्शियल रोल प्ले किया जिसके लिए मैं आपको और तो नहीं ज्यादा बता सकती, बट इतना बताऊंगी कि बहुत से आर्टिस्ट ने उस रोल को नहीं कहा, नो कहा, बिकॉज वो कॉन्ट्रोवर्शियल रोल है. लेकिन हाजरा हैड द गट टू से यस टू दैट रोल, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हर. तो ये कुछ बहुत और हैं, बहुत अमेजिंग टैलेंट है, बट ये कुछ मेन कास्ट मेंबर्स हैं. और फिर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ ये दो प्रोडक्शन कंपनीज का जॉइंट एफर्ट है, एक मेरी अपनी है शाज मीडिया प्रोडक्शंस, और फिर शूट एट साइट जिसपे फाहद शेख और उमर खान मेरे को प्रोड्यूसर्स हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स रजा नमाजी और यूसुफ अली खान है. और इन्होंने मेरा तब साथ दिया जब सबने छोड़ दिया, क्योंकि असल चीज होती है पैसा देना इस तरह के प्रोजेक्ट पे. और उन्होंने हालांकि उनका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, बट दे आर टेकिंग इट एज अ बिजनेस वेंचर, एंड दे गेव अस द डिसिप्लिन दैट वी नीडेड, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बजट में रहो, टाइम पे खत्म करो, ऐसी चीजें उन्होंने मैनेज की. और I mean, I'm very grateful for them. मैं first time director हूँ and they took a risk, so really grateful.
शाजी जी, शाजेब साहब का एक सवाल आ रहा है. उनका कहना यह है कि यूजली पाकिस्तान में जो फिल्म ट्रेडिशनल बनती है, पुराने प्रोड्यूसर्स हैं उस तरह की फिल्में, और आपने टोटली एक नया रुख फिल्म का किया और बाहर फिल्म बनाई, बाहर से आप, तो इस तरह का आप नए जो आने वाले हैं इस किस्म की इंडस्ट्री में प्रोड्यूसिंग में, क्या उनको कहेंगी?
इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर ले, नए आने वाले हमारे जैसे फनकार, मैं और आप ही आसमा, उन्हें भी आप क्या लेंगे फ्यूचर में?
जरूर, क्यों नहीं. लेकिन ये मैं आपको वार्न कर दूं कि ऑडिशन सबने दिया और काफी रगड़े वाला दिया, और फिर लेकिन फिर जाहिर है, मतलब अगर आप फिट होंगे कैरेक्टर के लिए तो वो. बट आपका जो दूसरा सवाल है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये यू सी, मैं कैसे आपको समझाऊं. देखिए, अगर आपको बिरयानी पसंद है या निहारी पसंद है, वो आपकी पसंदीदा डिश है, लेकिन अगर आपको कोई हर रोज बिरयानी और निहारी दे तो वो कैसे आपकी, मतलब आप तंग आ जाएंगे.
बिल्कुल.
तो इसी तरह इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पाकिस्तानी ऑडियंसेस को कुछ नया दिखाएं ना, कुछ हटके, चाहे शुरू में उनको ना इतना समझ आए.
बिल्कुल.
जी, मतलब उनके टेस्ट को वेरी करें. जी, हर चीज एक तरह तो नहीं हो सकती. तो जो यंग फिल्म मेकर्स हैं पाकिस्तान से या इंग्लिश ब्रिटिश पाकिस्तानी, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे से सीख लें थोड़ा सा कि मैं कूद गई. कई दफा आपको सिर्फ कूदना पड़ता है, आपको कोई धक्का, यू नो, आपको कोई धक्का तो नहीं देगा, आपको खुद करना है.
तो अगर अब सही बात
सीख लेते हैं, एग्जैक्ट, और कई दफा डूब जाते हैं. तो अभी अभी मैं फिलहाल डूबी नहीं हूँ, लेकिन अगर डूब गई तो सॉरी, वो भी एटलीस्ट कोशिश तो की थी ना.
इंशाल्लाह आप कभी नहीं डूबेंगी, हमारी दुआएं आपके साथ.
शाजी जी, वो कहते हैं ना कि गिरते हैं
शह सवारी
मैदान जंग में. तो यह कि हर नया काम शुरू करते वक्त कुछ ना कुछ हिकअप्स तो होते हैं, जरूर
होते हैं, बहुत हिकअप्स होते हैं. लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द जो आपकी टीम है, जो मेरी बहुत अच्छी थी, उन्होंने ये स्क्रिप्ट पैसों, ये प्रोजेक्ट पैसों के लिए नहीं लिया. हमजा यूसुफ हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं, वो एनसीए में पढ़ाते हैं, और उन्होंने आज तक कोई फिल्म नहीं ली एज अ डीपी, बट उन्होंने ये इसलिए ली क्योंकि कहते हैं क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी. और यूजली आपका डीओपी स्क्रिप्ट पढ़ता भी नहीं है टिल मच लेटर. और फिर इसी तरह हमारे जो एडिटर हैं वो इंडिया से हैं, सूरज गुंजाल, उन्होंने भी यही कहा कि मैंने सिर्फ ये ली बिकॉज मैंने कहा चलो करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं. तो यू नो, आई एम नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग विदाउट माय टीम. ये कोई बुक या पेंटिंग नहीं है, ये मूवी है. ये और लोगों की एफर्ट के बगैर नहीं बन सकती.
बिल्कुल सर, टीम वर्क नहीं, बहुत ही इंस्पिरेशनल है आपका जो टुवर्ड्स न्यू थिंग इन द मूवी, कि एक नया डायरेक्शन आप दे रही हैं और जो यंग पीपल हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है.
जी थैंक यू. अभी पता नहीं मैं इस तारीफ के लायक हूँ भी या नहीं, लेकिन आप फिल्म देखिएगा फिर मुझे बताइएगा.
इंशाल्लाह जरूर हम आपकी फिल्म देखेंगे. और शाजी जी प्लीज बता दीजिएगा अपनी सोशल मीडिया डिटेल्स अपनी पिंकी मेम साहब के हवाले से, ताकि ये लोग जो आपकी नई इस फिल्म के हवाले से जितनी भी अपडेट्स आने वाली है उनको फॉलो कर सके हमारे सुनने वाले. तो जरूर बताइएगा कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज बनाया है आपने.
जी हमारा अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम पिंकी मेम साहब है, तो वो है, और फिर हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/pinkymemsaab वो है। इसके अलावा हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो आप अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा या आपको यू नो जो जर्नलिस्ट लिख रहे हैं इसके बारे में एटसेट्रा एटसेट्रा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जरूर उसको फॉलो कीजिए, हमें लाइक कीजिए, ताकि यू नो इसी तरह हमारी हिम्मत बढ़ेगी। और दूसरा ये कि इंग्लैंड यूके में लाने की जहां तक ताल्लुक है फिल्म का, तो अगर आप जस्ट राइट इन टू अस कि इफ यू रियली वांट दिस फिल्म टू कम देन एटलीस्ट आई विल बी एबल टू यू नो टेल पीपल कि देर इज एन ऑडियंस इन द यूके ऑल्सो हु वांट्स टू वॉच दिस फिल्म, सो मे बी दैट वे आई कैन कन्विंस समबडी टू टेक इट ऑन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। बट अगर नहीं हो सका तो प्राइवेट स्क्रीनिंग तो मैं जरूर लेकर आऊंगी, ये मेरा वादा है।
चलें बहुत शुक्रिया शाजिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ बात की, और यकीनन हम कोशिश करेंगे आपकी फिल्म की कास्ट के इंटरव्यू भी किए जाएं, उनसे भी इस फिल्म में काम करने के एक्सपीरियंस के हवाले से बात की जाए।
बिल्कुल,
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जरूर जरूर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो,
हैव अ लवली डे, और फिर एक बार आपको मुबारकबाद फ्यूचर के लिए भी, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच।
ओके शाजी जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह
हाफिज। अल्लाह हाफिज।
और हमारे साथ मौजूद थी शाजिया अली खान, ऑल द वे फ्रॉम दुबई, और फिल्म के हवाले से बातचीत हो रही थी पिंकी मेम साहब, और बहुत ही जबरदस्त सी फिल्म इन्होंने बनाई है। और यकीनन अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा, हमारे फेसबुक के पेज पे जाइए, ट्रेलर देखिए। नॉर्मल शो जो है रिज्यूम होगा इसके बाद आपी आसमा के साथ, तो सुनते रहिए, और इमरान अली अख्तर की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ये गाना भी सुनिएगा।
Love.